نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم گیارہویں پارے کا آغاز کریں گے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بہانے بناتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے, جب آپ ان کی طرف لوٹ آئیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ آج بہانے نہ بناؤ کیونکہ ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالی ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا ہے اور عن قریب اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہارے اعمال کو, پھر اس کے بعد تم ہر چیز کو جاننے والے اور ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, پھر وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کرتے تھے. پارے کا آغاز جس آیت سے ہے, پچھلے پارے کا اختتام بھی اسی موضوع سے تھا. ہم نے دسویں پارے کے آخر میں بہت ہی خوبصورت لوگوں کو دیکھا کہ جو اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں اسباب کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستوں میں نکلے. آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے لوگ چلے گئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کام کا موقع نہیں دیا. اب یہاں اس سے مختلف کردار سامنے آ رہا ہے, اور وہ کون تھے جو تبوک کے سفر میں پیچھے رہ گئے اپنی آرام طلبیوں کی وجہ سے, اپنے مال کی, کاروبار کی, محبت کی وجہ سے. لیکن سامنا تو ہونا ہی تھا, آخر کب تک چھپتے. تو جب دیکھا کہ اب جانا تو ہے ہی ہے تو پھر آپ سے محبت کے بہانے کرتے ہوئے چھوٹے عذر تراشنے لگے. منافق کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ کام کرتا کوئی نہیں, موقع ٹل جائے تو بہانے سوچتا ہے کہ اب جب ملوں گا تو کیا کہوں گا, جب کسی سے کوئی معاملہ پڑے گا تو اس کو کیا کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں اپنی عدالت میں پیش کر کے, کس نبی کو بتانے کا کیا فائدہ, اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی نیکی کا موقع آئے اور ہم کسی مشکل میں ہوں, اور وہ مشکل نفس کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس وقت کو سوچیں کہ جب وہ وقت ٹل چکا ہوگا. کوئی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی, کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. پھر سوچیں کہ اس وقت کیا کھویا اور کیا پایا. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں, بلکہ مجبور کل سمجھتے ہیں, حالانکہ مجبور نہیں ہوتے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہماری کارکردگی میں بہتری ہو سکتی ہے, لیکن بعض دفعہ ہم چھوٹی سی چیز کو عذر بنا کے اس طرح دین سے پیچھے رہتے ہیں کہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. مثلاً اگر سردی کا عذر بنا کے ہم گھر میں رہیں تو سردی چلی بھی جاتی ہے, پھر بھی آنے کی توفیق نہیں ہوتی. بیماری کا عذر بنا کے گھر میں رہتے ہیں تو صحت مل بھی جاتی ہے, پھر بھی نہیں آتے. بعض دفعہ مسجدوں میں لوگ نمازوں میں نہیں جاتے کہ نہیں ہمارے کاروبار ہیں, ہم جاب پہ ہوتے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جو نمازیں جو جاب کے بعد بھی آتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انتقام سے محفوظ رکھے کہ ہم ایک بات اپنی مرضی سے چھوڑے اور دوسری اللہ ہم سے چھڑا لے. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تم نہیں آتے, بلکہ اللہ یہ کہہ دے کہ ہم تمہیں آنے نہیں دیتے. یہ ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ. تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر لو, کر ہی لو, چھوڑ دو, اگنور کرو, مت ان سے پوچھو کیا تھا سچ تھا, جو کہتے ہیں مان لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہم رجسن, یہ گندگی ہے, اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی. یہ ہے بات. اللہ اپنے نبی کو ایک بہت خوبصورت طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کردار اور اخلاق کے نا, آپ ان کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, نہیں گئے تبوک میں, آپ کے بغیر بھی تبوک ہو گئی, جنگ ہی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے یہ سارے جو ڈر رہے تھے لڑنے سے جاتے تو اچھی بھلی جھڑپ ہو جاتی. ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے. ये नहीं कहे अल्लाह ने ईमान वालों को रास्ते की सौगतों में चूंकि खरा खोटा देख लिया था, फर्क पता चल गया। तबूक का फैसला वहां नहीं होना था जाके, एक महीने के बाद ये घर से निकलते ही हो गया। जो लोग उस रास्ते में निकल पड़े अल्लाह को पता चल गया ये निकलने वाले थे, जो नहीं निकले वो पीछे रह गए। तो जंगों के फैसले बाद में नहीं पहले ही हो जाते हैं, काम होने के बाद काम नहीं होता। काम करना किसने है, कब करना है, इसी से फैसले हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि आप इनकी बातों की ज्यादा परवाह ना करो। यहलिफून लकुम लितरदऊ अनहुम, ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे तब कि तुम इनसे राजी हो जाओ। ये मसला होता है मुनाफे का, अल्लाह की रजा अल्लाह की खुशी नहीं मकसूद, उसको पीछे डाल दिया। हाँ फिर नबी के सामने आके बड़ा बनना चाहते हैं, तो अल्लाह कहते हैं आप हो जाओ, मैं तो नहीं होऊंगा। अगर आप इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह तो ऐसे फासिक लोगों से कभी राजी नहीं होगा। कितनी बड़ी धमकी है, अल्लाह के नबी को बातों से राजी कर भी लेते ये, और अल्लाह के नबी इंसान थे, उनको दिल के भेद भी नहीं पता थे इनके क्या सोच के आए हैं, लेकिन उस रजामंदी का कोई फायदा होता? बिल्कुल ना होता। इसके बाद अराब की बात है, अराबी भी असल में निफाक पे थे, और हकीकत है इंसान जितना इल्म से दूर होगा उतना उसके अंदर निफाक ज्यादा होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की अपने नबी को पहचान कराते हैं। अल आराब व अशद्दु कुफ्रम व निफाकम व अजदरु अला अल्ला यालमु हुदूद मा अनज़लल्ला, ये बदवी अरब कुफर और निफाक में ज्यादा सख्त हैं, और इनके मामले में इनके इस काम के इम्कान ज्यादा हैं कि इस दीन की हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हकीम और दाना है। ये बहुत बड़ी एक हकीकत है कि जिस शख्स को दुनियावी इल्म की कदर नहीं होती ना, उसको दीन के इल्म की भी कदर नहीं होती। आप इस चीज़ को कई जगह ज़िंदगी में आजमाएंगे। जो इंसान सेंसिटिव होता है ना, वो हर चीज़ में सेंसिटिव होता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग दुनियावी तौर पे पढ़े लिखे होते हैं, वो फिर अगर उससे महरूम रहते हैं ना, या उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, या वो उसके लिए कोई कीमत देते हैं या उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो कल बस अल्लाह उनको हिदायत दे दे, फिर वो ये सब कुछ उसके लिए भी करेंगे। लेकिन जिसने कभी दुनिया के लिए ये कुर्बानियाँ ना दी हों, जिसने दुनिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना किया हो, फिर उसके लिए दीन को भी फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, अल्लाह समीउ अलीम है, वो खूब सुनने और जानने वाला है। अल अराब व शद्दु कुफ्रा, और अराब सख्त हैं कुफर और निफाक में, और ज़्यादा सख्त हैं इस बात से कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन की हदों को जाने, और अल्लाह खूब इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अराब में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में जो कुछ देते हैं वो इस सोच के साथ देते हैं जैसे कि ये इनके लिए जुर्माना है। लफ्ज मगरम इस्तेमाल हुआ, गैन रामीम गरीमा, कर्ज में फंसे हुए शख्स को गारिम कहते हैं, यानी उनको अल्लाह के रास्ते में कुछ देना जुर्माने की तरह लगता है, उनको लगता है ये जग्गा टैक्स है। और ये इस तरह के इशारा है उन लोगों की तरफ के जो ज़कात देने से पीछे हट गए थे। और यतरब्बसु बिकुम अद्दवाइर, और आपके मामले में वो ज़माने की गर्दिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन आपकी दुकान बंद हो और आप यहाँ से अपनी दुकान बंद करके निकल जाएं, ताकि ना इनसे ज़कात की बात की जाए और ना इनको दीन के किसी और काम को करने का हुक्म दिया जाए। इनका हाल तो ये है कि ये इस ख्वाहिश में है कि आपके ऊपर ज़माने की कोई गर्दिश आए, ये अपनी इस इताअत के फंदे को उतार कर फेंके और बुराई में पड़ जाए। हालांकि असल में होगा क्या, फरमाया अलैहिम दायरतुस्सौ, इनके ऊपर ही खुद बुराई का चक्कर है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वमिनल आराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और आराब में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ कुर्बत का जरिया और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ वो ज़रूर इनके लिए कुर्बत का जरिया है, अल्लाह ज़रूर इनको अपनी रहमतों में दाखिल करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इससे पता चलता है कि सबको एक लाठी से नहीं हांका जा सकता। कुछ लोग एक चीज़ में अच्छे हो ना हो, दूसरे कोई दूसरी चीज़ में अच्छे होंगे, अल्लाह ताला हर एक को उसका ड्यू हक देता है। इसके बाद अब अल्लाह ताला चुने हुए लोगों की बात करते हैं। वस्साबिकूना अलअव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान, और आगे बढ़ने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से, और इसके बाद वो लोग जो इनके पीछे ईमान के साथ चले, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो उससे राजी हो गए और अल्लाह ने उनके लिए तैयार की वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा। यही है कामयाबी बहुत बड़ी। बहुत ही खूबसूरत आयत है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड और किसी को थर्ड दर्जे पे ला रहे हैं कि जिसकी जितनी कोशिश उसको उतना रिवॉर्ड। कुछ करो बगैर कुछ पाने की नीयत के तो रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे, अजर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, नाम भी होगा, शोहरत भी होगी। लेकिन जब इंसान करे कराए कुछ ना और सिर्फ ये चाहे कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश हो जाएं, ये अल्लाह की आदत नहीं है। हाजरीन और अंसार में से साबिकून अल अरब अव्वलून कौन थे कि जूं ही इनके सामने नेकी का कोई मौका आया इन्होंने कर लिया। हिजरत करनी पड़ी तो फौरन कर ली, सोचा कोई नहीं। कुछ लोगों ने बाद में भी हिजरत की थी, वो इस दर्जे को नहीं पा सके। और अंसार कौन थे कि जिनको अल्लाह ताला ने मौका दिया एक नेकी करने का, इन्होंने फौरन कर ली। बाद में तो मक्का से आए हुए लोगों के हालात बिल्कुल दुरुस्त हो ही गए थे, तो पता क्या चला कि अल्लाह को वो लोग अच्छे लगते हैं जब ईमान की दावत मिले, जब नेकी की दावत मिले तो लब्बैक रब्बना वसादैक कहें। सोचे ना मशरों ना में ना पड़ जाए, जको तक्के में ना हो, करूँ ना करूँ, ये हो ना हो, फिर वल्लज़ीन तबऊ बेहसान। ये तीसरा गिरोह होता है जो हर दौर में होता है, दूसरों को देखे देखे फिर आगे आते हैं, अच्छा फिर मैंने ना किया ये काम तो मैं तो पीछे रह जाऊँगा, फिर मैं तो नुमाया हो जाऊँगा, सबको पता लग जाएगा, अच्छा जी ये इसका, चलो फिर कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं कर लिया। रदी अल्लाह अन्हुं व रदुवन। दुआ कीजिए नेकियों की तौफीक मिल जाए। ट्रेंड सेटर्स नहीं भी बनते तो कम अज़ कम जो ट्रेंड सेट कर दें उन्हीं के पीछे चल पड़े। देखिए एक को नेकी का ख्याल आता है, सबको नहीं आता, उस वो पायनियर है, चलो उसको दे के तुम भी कर लो। हर बंदा इतना क्रिएटिव नहीं है कि वो नेकी को सोचे, तो दूसरे के करने पे ही कर लो, अल्लाह उस पर भी जन्नत दे देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत मेहरबान है। और अल्लाह जिससे राज़ी हो उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसमें नहरें बहती होंगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। फिर अपने नबी को अल्लाह ताला मुख्तात करते हैं, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबी मुनाफिकून, आपके गिर्दो पेश जो बदवी रहते हैं इनमें से बहुत सारे मुनाफिक हैं। इसी तरह खुद मदीना के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो निफाक में बड़े होशियार हो गए। तुम इन्हें नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। करीब है कि जब हम उनको दोहरी सजा देंगे फिर वो ज़्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। अल्लाह मला तचलना मिनहुम। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों के हालात क्यों बताता था? ताकि आप इनसे धोखा ना खाएं, आप इन पर ट्रस्ट करते हुए कोई ऐसा काम इनको दे दें और ना कर सकें तो दीन का नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हम सब का तज़किरा किया। वो कैसे? तर्जमा सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे, वआखरूना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्यिया। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ कर लिया है, इनका अमल मिला जुला है, कुछ नेक है और कुछ बद, इनके साथ क्या होगा? बाइत नहीं कि अल्लाह इन पर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वह दरगुजर करने वाला और मेहरबान है। हर एक साबिकून अव्वल उनमें नहीं आता। एक सहाबी थे, उन्होंने जब कुरान पाक में यह आयत पढ़ी कि फी ही जिक्रो को, लोगों इस कुरान में तो तुम्हारा जिक्र है, 17वें पारे में यह आयत आती है, कहने लगे इसमें मेरा जिक्र है, किधर है? कुरान पढ़ना शुरू हो गए। अब जब साबिकून अव्वलून वाली बातें पढ़ी, कहा मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो इतना नेकियों में आगे नहीं पढ़ा हुआ। फिर कुफर और निफाक की आयतें पढ़ी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं हूँ, मैं हूँ किधर? इस सोच के साथ कुरान पढ़ते रहे। और जब इस आयत पर पहुँचे आखरू ना तरफू बिजुनू बिहिम, तो कहने लगे हाँ ये मेरा जिक्र है, कि अल्लाह गुना भी हैं, कुछ नेकियाँ भी हैं, खलत मलत है, खिचड़ी पकी भी है, लेकिन साथ तौबा भी करते हैं तो शायद अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। खुस मिन अम्वालिहिम सदकतन तुतअख्खिरुहुम, आप इनके माल में से सदका ले लीजिए और इनको पाक कीजिए और नेकी की राह में इनको बढ़ाइए और इनके हक में दुआ रहमत कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। यहाँ से पता चलता है कि जब कोई दीन के लिए कुछ करे तो उसको दुआ देनी चाहिए। उसके लिए दुआ का मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप देखिए दुआ कराने की नीयत करके कुछ करना ये और बात है, लेकिन आप नेकी का कोई काम करें और आपका वो काम हो जाए उसके बाद आप उसको दुआएं, ये सुन्नत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के रास्ते में कोई कुछ देता तो उसको दुआ देते थे, उसके लिए आपकी जुबान से अच्छे कलेमात होते थे। इससे पता चलता है कि इंसान को थोड़ा सा इनक्रेजमेंट मिल जाता है तो वो और नेकी करता है और उसका भी दिल चाहता है और वो अपने आप को फिर इस चीज़ में आगे लेके आता है। तो हम भी आज दोबारा इस बात हुई तो सोबिया के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी बुक्स लेकर आई हैं, तो हम दुआ करते हैं कि इन्होंने जो भी वज़न इधर उठाया अल्लाह की किताबों का, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह इनके आखिरत के बोझ को हल्का करे और अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें करे। फिर इसके बाद फरमाया अलम यालम अन्नल्लाहा हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याखुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाहा हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या उन्होंने नहीं जाना? ऐसे लगता है इसी आयत को पढ़ के कि बिल्कुल हम पीछे खड़े थे और चुपके से कोई आके कह रहा है तुम्हें नहीं पता चला क्या कि बेशक अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। तुम्हें नहीं पता कौन तौबा कबूल करता है? तुम जीसस को जाके कहते हो कि मुझे पार्डन दे दो और प्रीस को कहते हो और बुजुर्गों से जाके कहते हो? नहीं, हुआ वो है, उसको ढूंढिए। कौन है वो? यकबलु तौबता अन इबादिही, जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। कितनी अल्लाह की रहमत है, जिस दिन आप अल्लाह ताला के नाम अत्तवाब को सुनेंगे फिर आपको इसका एहसास और अच्छी तरह होगा कि अगर अल्लाह हमारे गुनाह साफ ना करे तो हमारा हाल क्या हो। इसको बस इस तरह समझ लीजिए कि जिस घर में सफाई ना हो और गंद पे गंद डलता जाए, चीज़ें और लोग लाते जाएँ रखते जाएँ और पिछली चीज़ें ना समेटें, तो उस घर का हाल क्या। आप अपने किचन को उस वक्त सोचें जब आप ग्रोसरी ला ला के थैलों के थैले रखते जाएँ और उठाएँ ना। इसी तरह हम अपने जिस्म पर गुनाहों का बोझ लाते रहते हैं, अल्लाह तौबा के पानी से धोता रहता है, साफ करता है, ऑर्गेनाइज करता है, हमारी खराबी गंदगी ऐसी जो चीज़ें उनको पीछे कर देता है। तो अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है जो बंदे के ऊपर होती है। फिर अपने नबी को मुखातिब किया, वकुले महलू, ए नबी इनसे कह दो कि लोगों तुम अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन देख लेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है। यानी क्या हुआ, पिछली गलतियों पर क्यों पछताते हो, पिछले गुनाहों पे क्यों शर्मसार हो? अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी बहुत सारे मौके आएंगे, फिर तुम उसमें अल्लाह ताला के रास्तों में निकलोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी उस नेकी को कबूल करेगा। ये है इस्लाम की खूबसूरती कि इंसान को कभी मायूस नहीं होने देता। कोई बात नहीं, जिंदगी के नक्शे में आगे देखो, गाड़ी में बैठते हैं तो बैक मिरर में नहीं देखा जाता वरना एक्सीडेंट होगा, इसलिए जिंदगी के सफर में हमेशा आगे देखना चाहिए। हम जब बहुत पीछे देखते हैं ना तो उसके नतीजे में एक्सीडेंट होते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारी रही सही कोशिश जो है वो भी दम तोड़ने लगती है। फरमाया तुम अमल करो, अन करीब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे आमाल को देखेंगे और साथ ही साथ ईमान वाले भी देखेंगे, फिर अन करीब तुम फेर दिए जाओगे गैब और हाजिर को जानने वाले के सामने, फिर वो तुमको खबर देगा उस बात की जो तुम अमल करते थे। वाखरून मुरजून लि अम्रिल्लाही, और एक दूसरा भी गिरोह है जो उम्मीदवार है अल्लाह के हुक्म के, या तो वो उनको अजाब दे या फिर वो उनको माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। ये असल में वो सारे मुकदमे खुल रहे हैं जो अब तबूक के सफ़र के बाद थे। जिस तरह तबूक के सफ़र के बाद ये सब कुछ दुनिया में हुआ ना, कल क़यामत के दिन भी यही सब कुछ होने वाला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों के मामलात हमने रोके हुए हैं। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना हिसाब खुद ले लेते हैं, कुछ को दूसरों को हिसाब देते हुए भी मुश्किल लगता है, कुछ अपना भी ले लेते हैं। ऐसे ही सहाबे कराम बहुत मौके पे अपने ईमान को परखते थे, जैसा कि आगे वो तीन लोगों का वाक़या भी आएगा जिस जो पीछे रह गए थे। लेकिन अबू लुबाबा एक सहाबी थे, ग़ज़वे बनू कुरैज़ा के मौके पर सालिस बना दिए गए। सालिस मुराद उनको फ़ैसला करना था। यहूद को इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था। यहूद ने कहा कि हमें अबू लुबाबा से मिलना, हमें वो मशवरा जो देंगे हम उसको ही मानेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है आप चले जाए। अबू लुबाबा जानते थे कि ये अगर गिव अप कर देंगे तो अल्लाह के नबी सल्लम इनको कत्ल करवा देंगे। तो यहूद ने जब इनको देख के रोए धोए और पूछा बताओ कि अगर हमने गिव अप कर दिया या अगर हमने हाथ आगे डाल दिया अल्लाह के नबी के आगे तो हमारे साथ क्या होगा, ना ये ज़ुबान से बोले ना आँखों के इशारे से, सिर्फ इन्होंने हाथ के इशारे से यूँ गर्दन पर हाथ फेरा, इतना हल्का सा इशारा क्या था कि ज़िबा कर देंगे, ये जुमला बोला। जो ही इस तरह इशारा किया इनको फौरन ख्याल आया कि मैंने तो अल्लाह के नबी की खयानत कर दी, मैंने वो राज अफशां कर दिया जो मुझे नहीं करना था, ये तो इनको पता चल जाएगा अब ये अपना फ़ैसला बदल लेंगे। ये अलग बात है कि यहूद इस बात को सुन के भी इतना डरे हुए थे कि उन्होंने फिर भी हाथ फेंक दिए, लेकिन ये वापस आए और इन्होंने ख़ुद को मस्जिद नबी के एक सतून से बांध दिया। कहा कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने हाथ से नहीं खोलेंगे, मैं नहीं खुलूंगा। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी इनका इंतज़ार कर रहे थे कि अबू लुबाबा गए थे, पता नहीं आए नहीं, वापस नहीं आए। लोगों ने बताया कि वो तो मस्जिद नबी के एक सतून से बंधे हुए। वे क्या बात हुई, ये बात हुई, आपने कहा कि मेरे पास आते तो मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करता, अल्लाह उनको माफ़ कर देता, लेकिन अब उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सामने डाल दिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। 8 दिन तक अबू लुबाबा उस सतून से बंधे रहे। नमाज और ज़रूरियात के लिए उनकी बीवी उनको खोलती, नमाज पढ़ के वापस उसी जगह बनते। फिर उनकी उसके बाद तौबा की आयतें उतरी, फिर लोगों ने खोलना चाहा, कहा नहीं मुझे अल्लाह के नबी खोलेंगे। ये होते खुद को पकड़ने वाले। मैं कहती हूँ जो बंदा खुद को पकड़ेगा उसको कौन पकड़े, जो खुद ही केयरफुल रहता है उसको कभी भी पुलिस के पास नहीं जाना पड़ता। हम अपने अंदर ये ईमान पैदा करें, ये एक फुरकान है, ये क्राइटेरियन है कि हमें खुद पता लग जाए कि हम कितने पानी में हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग फिर उम्मीदवार हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खुद को भी अपने आप पे नज़र रखने वाला बना दे कि हम अपनी गलतियों को खुद देखें। एक और साजिश थी जो इस मौके पे हुई, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गरज से कि दावत हक को नुकसान पहुँचाएँ और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डालें। आप एक एक बात को हाईलाइट करके देख लें, है मस्जिद लेकिन मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, कुफर के लिए और फिरकाबाजी को आम करने के लिए, और असल में अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई के लिए एक किस्म की ये कमीनगा बन चुकी थी। कौन सी मस्जिद? मस्जिद दरार। तफसील से हम इसका वाक़या सुन चुके हैं तफसीर के सेशन में कि किस तरीके से अबू आमिर फासिक जो हज़रत हंजला के बाप थे, उसने दौरे जाहिलियत में नसरानियत कबूल किया। जब अल्लाह के नबी की सरगर्मियाँ बढ़ने लगी तो आपको पीछे करने के लिए एक घात बनाई, जगह एक ली जिसका नाम तो मस्जिद रखा, वरना तो मुसलमानों को पता चल जाता और अंदर असल में उसके मकसद क्या था कि यहाँ मुसलमानों के खिलाफ बातें हों, मीटिंग्स हो, उसी का तस्करा था। अल्लाह के नबी सल्लम तबूक की तैयारियों में थे कि इस शख्स ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप आके इसमें एक नमाज़ पढ़ा दें। ऐसे लोग लीगलाइज कराने के लिए बिस्मिल्लाह आपसे ही कराते हैं ताकि दूसरों को पता चल जाए कि ये चीज़ आपसे वेरीफाइड है या आपसे ये अप्रूव्ड है। आपके दिल में कोई बुराई नहीं थी, आपने कहा कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, जब सफ़र से वापस आएंगे तो फिर पढ़ा देंगे। लेकिन जब आप अल्लाह के नबी सल्लम वहाँ से वापस आए, अभी रास्ते में थे, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ला तकुम फीही अबदा, आप इस मस्जिद में बिल्कुल ना खड़े हों। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर है, वो ज़्यादा हकदार है इस बात की कि आप उसमें खड़े हों, क्योंकि उसमें कुछ मर्द हैं ऐसे कि जो पसंद करते हैं इस बात को कि वो पाकीज़ा रहें, और अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। और वो मस्जिद या वो इमारत जिसकी बुनियाद तकवा पर हो अल्लाह के, यानी वो इमारत जिसकी बुनियाद में अल्लाह का तकवा और उसकी रजामंदी हो, वो बेहतर है। यानी अब यहाँ तकाबुल हो रहा है मस्जिद कुबा से, बाज़ कहते हैं मस्जिद कुबा और बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद मस्जिद नबी है। लेकिन जब तख़रू की बात देखें तो एक हदीस में मिलता है कि अल्लाह ताला ने सहाबे कुबा वालों की तारीफ़ की क्योंकि ये तहारत के लिए मट्टी के बाद पानी भी यूज़ करते थे। तो यहाँ मस्जिद कुबा की तरफ इशारा है कि एक तरफ वो मस्जिद जो बनाई गई थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इतना अच्छा काम करवाया अल्लाह के अपने नबी से, और दूसरी तरफ उसके बदले में मस्जिद ज़रार जो बना दी गई। तो आप ऐसी मस्जिद के अंदर क्यों जाएंगे जिसका मकसद ही शिर्क को फैलाना है और जो फ़िरका वारियत के लिए। ऐसे लगता है कि आज के दौर का मुसलमानों का कल्चर बताया जा रहा है कि अपने मसलक की मस्जिद बनाने के लिए ये भी नहीं सोचते कि इसी मस्जिद के दूसरे कोने पर एक और भी मस्जिद मौजूद है। ऐसी कई इमारतें आपने भी देखी होंगी, एक तरफ मस्जिद दूसरी तरफ मस्जिद, यानी एक ऐसा शहर है जब मैं वहाँ गई 3 तरफ मस्जिद है, मिडल से आप इधर देखें तो मस्जिद, इधर देखें तो मस्जिद, इधर देखें तो मस्जिद, और उन्होंने बताया कि ये 2 मील के अंदर शायद 8 मस्जिदें हैं। मसला क्या है, वो एक फ़िरके ने बनाई तो दूसरे ने काम भी बनाएंगे। और कैन यू बिलीव कि एक जगह ऐसी है कि बीच में दीवार है, इधर भी मस्जिद इधर भी मस्जिद, बाद में पता चला वो पहले एक ही थी अब 2 हो गई हैं। यानी क्या क्या कहानी है। हर वो मस्जिद जिसका मकसद मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ना हो तो वो फिर इसी तरह आएगी। अब अल्लाह ताला इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं कि तुम ज़रा सोचो तो सही, अफमन अस्स बुनियान हो अला तकवा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी। यानी इशारा है मस्जिद कुबा या मस्जिद नबी की तरफ, कि जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोड़ा गया और जिसके अंदर कितनों की कुर्बानियां थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर अल्लाह का नाम बुलंद करने वाले थे। क्या ये उस दूसरी मस्जिद की तरह हो सकती है? कौन सी मस्जिद? अमन अस्स बुनियान हुआ शफा जुरुफिन हारिन, या वो मस्जिद जो एक किनारे पर खड़ी हो गोया के वो खाई में गिरने ही वाली है, खोखली वादी। कोई ऐसा पहाड़ सोचे कि जो नीचे से पानी की वजह से खोखला हो चुका और ऊपर गया समंदर के अंदर तक, और उसके ऊपर अगर कोई मस्जिद बनाएगा या कोई इमारत बनाएगा तो फरमाया कि वो मस्जिद, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी उसके अंदर गिरेगी। तो ऐसी तमाम मस्जिदें या ऐसे तमाम इदारे या ऐसी तमाम चीज़ें जो मुसलमानों के अंदर ये तीन चार काम करवाने के लिए हों, जिसका आयत 107 में तस्कर है, तो उसका अंजाम अल्लाह ताला बताते हैं फनहार बिही फी नारी जहन्नम, वो इसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी। और ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला कभी राह नहीं दिखाता। यहाँ बहुत सोच की बात है, खौफ वाली बात है कि काम बाहर कितने ही नेकी का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें नीयत ठीक नहीं है तो वो जन्नत में ले जाने के बजाय जहन्नम में लेके जाने वाली होगी। अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं ला यसालु बुनयानहुम अल्लज़ी बनौ रीबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम, हमेशा ही ये इमारत उनके दिल के अंदर एक कांटा बन के चुभेगी और इससे ये होगा कि इनके दिल कटने लगेंगे, और अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला। यानी ऐसी इमारतें बनाकर भी दिलों की बेयकीनी और बेचैनी ख़त्म नहीं होती और इससे ये निकलेंगे नहीं, दिल पारा पारा हो जाते हैं। अल्लाह बाखबर हिकमत वाला। आज भी ऐसे हालात जब होते हैं तो आप देखिए कि जो मस्जिद दूसरे से कटती है या मुसलमानों का एक गिरोह मसलक के नाम पर कटता है, कुछ अरसे के बाद वो कटने वाला फिर दो हिस्सों में बट जाता है, फिर दो वाला चार में होता है। यही बात यहाँ बताई गई कि फिर दिल खट्टे होते हैं, फिर दिल फटते हैं। मस्जिद बाद में बनती है, लोग पहले फटने शुरू हो जाते हैं, कहीं लीडरशिप की बातें, कहीं सदारत और वजारत की बातें, क्योंकि तकवा जो नहीं है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। सोचिए अपने आप को, ये आपकी बात है, लग रहा है कि मैं बिकी हुई हूँ। बिकी हुई चीज़ पे तो आपका इख्तियार ही नहीं रहता। क्या मेरा मेरे माल पे और मेरे जिस्म पे इख्तियार है? बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात है जो हमें बिकी हुई चीज़ फिर भी इस्तेमाल करने को दे रही है। ऐसे होता है जैसे अपने बहन भाइयों में कोई आपका घर खरीद भी ले, फिर कहते हैं चलो आपसे खरीद भी ले, और फिर भी कह के चलो तुम रह लो, ये कर लो, वो कर लो। अल्लाह ने ये जिस्म हमें दिया लेकिन इसके बदले में कहा फिर भी तुम इस्तेमाल करो। अब इसकी कीमत देना चाहते हैं, वो कीमत क्या है? वो अल्लाह की राह में लड़ते और मरते और मारते हैं, यानी जब मौका आता है तो मरने मारने तक भी उससे गुरेज नहीं करते। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे एक पुख्ता वादा है। कहाँ है इसका हवाला? फरमाया फित तौरात वल इंजील वल कुरान, दुनिया की तीन ऑथेंटिक किताबों का हवाला, कि इसका हवाला तौरात और इंजील और कुरान में है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो लोग कहते हैं कहाँ लिखी है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है, वो बात किधर है? तो अल्लाह ताला कहते हैं ये वादा तौरात में भी था कल लेकिन आज लोगों ने बदल दिया, ये इंजील में भी था लेकिन बदल दिया, हाँ आज भी कुरान में असल शक्ल में मौजूद है। वमन औफा बिअहदिहि मिनल्लाह, और ये तो बताओ अल्लाह से ज़्यादा वादों को सच्चा करने वाला कौन होगा? तुम इस वादे को निभा लो तो होगा क्या? फस्तबशिरु बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, बस खुशियाँ मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने उससे चुकाया, और बेशक यही है कामयाबी हकीकी। ऐसे नहीं लगता कि एक घर खरीदने की डील हुई है और उसके बाद सारे घर वाले खुशियाँ मना रहे हैं। कीमत तो देनी पड़ेगी लेकिन इसकी तो खुशी है ना कि अल्लाह ने सौदा हमसे कर लिया। कुछ मज़ीद काम जो इस किस्त को चुकाने में मददगार होंगे, अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून, और तौबा करने वाले और इबादत करने वाले और हम्द करने वाले और उसके रास्ते में गर्दिश करने वाले, रुकू और सजदे करने वाले, नेकियों का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, वबशिरिल मोमिनीन, इतने काम करे जो मोमिन उसको खुशखबरियाँ दे दो। मुश्किल है किसान, देखिए दुनिया में एक घर लेते हैं, बास कहते हैं मैंने चूड़ियाँ बेच दी, बास कहते हैं अपना घर बेच के एक और घर लिया, तो क्या मिलता है, कितना मिलता है, कितनी देर पास रहता है? और दुनिया के घरों के झगड़े ही नहीं ख़त्म होने को आते, ले भी कोई ले तो उसकी भी जान पे बनी है। तो क्या जन्नत में हमें एक घर लेना है तो उसके लिए ये काम करने मुश्किल है? और कब तक करने? मैंने देखा लोग मोस्टली 20 से 30 साल तक एक घर को पे ऑफ करते हैं, तो 20 और 30 साल ही हैं तकरीबन अमल की ज़िंदगी अगर देखी जाए, जो औसत अमल है, अगर वो अल्लाह को दे के जन्नत में घर बुक करा ले तो करना चाहते हैं बुकिंग? अल्लाह अकबर, हमें उस पर यकीन नहीं, हम कहते पता नहीं ये पार्टी बैठ ही ना जाए, बड़ी गारंटेड पार्टी है, कभी किसी का हक़ नहीं लेती। आज एक हाथ से अल्लाह को देते हैं ना, कल दूसरे हाथ से आप लेने वाले बनेंगे, उससे भी 70 गुना ज़्यादा, उससे भी जितना अल्लाह तआला चाहे। अल्लाह से मुबारकबादियाँ दे तो फिर बंदे को उसमें किस किस्म का शक होना चाहिए? लेकिन क्या करें, हमें बैंकों पे एतमाद है, हमें रिश्तेदारों पे एतमाद है, हमें अपने जैसे इंसानों पे एतमाद है, लेकिन हमें अल्लाह पर एतमाद नहीं है। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु यस्तग़फिरू लिल्मुश्रिकीन, नबी को और ईमान वालों को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें अगरचे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्यों? दिल को एकदम दुख होता है, हाय क्यों नहीं कर सकते? का मिन बादी मा तबय्यन लहुम, इसलिए कि उनके लिए ये वाज़ह हो गया कि वो असहाबुल जहीम है। ज़िंदगी ज़िंदगी में काफिर और मुशरिक के लिए दुआ की जा सकती है, और वो भी दुआ क्या होगी? हिदायत की, कि अल्लाह इसको गाइड कर दे। जब दुनिया से चला गया फिर ख़त्म। अल्लाह के नबी का यही तरीका अबू तालिब के मामले में देखा गया। आगे हज़रत इब्राहिम की मिसाल दी गई कि अच्छा नहीं, उन्होंने तो दुआ मांगी थी कि रब्बि फिर ली वली वालिदैय वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, वमा काना इस्तिग़फारु इब्राहिम लिअबीही, इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ करना तो सिर्फ उस वादे की वजह से था जो कि उसने उससे किया। बाप को कह चुके थे कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा, इसलिए की थी, वरना ये कानून तो है। और बास कहते कि हुक्म बाद में बदला था, इसलिए उन्होंने पहले कर ली हुई थी दुआ। हाँ लेकिन फलम आतबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, लेकिन जब उसको पता चल गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है तो बेजार हो गए उनसे। हालांकि इब्राहिम बड़े दर्दमंद, आहें भरने वाले और हलीम थे। सबसे मुश्किल जो होता है, आप सब नोट कर सकते हैं इस बात को, रिश्तेदारों की बेदीनी के बावजूद हम उनको गले से लगाए रखते हैं, उनकी रस्मों को, उनकी शादियों को, क्या करें ये नाराज़ होंगे। नमाज़ें पढ़नी आसान, रोज़े रखने आसान, सदका करना आसान, अपना जेवर अल्लाह के रास्ते में देना आसान, बच्चों को दीन पे लगाना आसान, सबसे मुश्किल क्या है? तबर्रा मिन्हु। इस वक्त हम मसलत का शिकार होते हैं, फिर इसको सब कहते हैं कतर रहमी, सिला रहमी, ये है वो है। एक सिस्टर थी तो वो अपने घर में क्लास करना चाहती थी, तो वो खुश है कि मैं करना चाहती हूँ, और दूसरे उनको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तो हक़ कर, हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते, फिर ये और वो। और दिल में असल में अपने कुछ होता है कि हमारे भी रिश्तेदार हैं, और सिला रहमी भी तो इस्लाम है, यानी हर वीकेंड पे कोई ना कोई पार्टी खाना और बुलाना, ये भी तो सिला रहमी है ना। तो फिर हम कुरान पढ़ेंगे अगर हर वीक, तो फिर हम वो सब कुछ कैसे करेंगे? शैतान कैसे दिफा करवाता है दुनियावी बातों का, लेकिन हम अल्लाह की बात को भूल जाते हैं। अब दिल में दुख आता है कि हाय काफिर बेचारे मर गए, इनको आग में डालना है, क्यों नहीं बख्शिश की दुआ? तो अल्लाह ताला उसका जवाब आगे देते हैं कि तुम ज़्यादा ना दर्द रखो उनका, मेरे वो बंदे हैं, तुमने तो उनको कुछ नहीं दिया, मैंने तो उनको अपने हाथ से बनाया, तो क्या वजह फिर इनके ऊपर अल्लाह के इतने गुस्से की? वमा कान अल्लाह लियुदिल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम, अल्लाह नहीं पकड़ता किसी कौम को गुमराही में, यानी अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबतला करे, जब तक इन्हें साफ साफ बताना दे कि इन्हें किन चीज़ों से बचना है। जिस काफिर की भी पकड़ हुई या जो बंदा कुफर पे मरता है ना, याद रखिए उसके दिल को पूरा यकीन होता है कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, इसके बावजूद वो ढीठ बने फिर अल्लाह उसको नहीं बचाता। बाकी वो जाने उसके बंदे, उसको पता है कि लोग क्या करते हैं। इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, बेशक बादशाही आसमानों ज़मीन की अल्लाह ही की है, और ये भी बात है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में ज़मीन व आसमान की सल्तनत है, इसी के अख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं जो तुम्हें उससे बचा सके। लक़द ताबल्लाहु अलन्नबी वल मुहाजरीन वल अंसार, बेशक तौबा कबूल की अल्लाह ने नबी की और मुहाजरीन की और अंसार की, वो लोग जिन्होंने पैरवी की उसकी तंगी की घड़ी में, उस दौर में के जबकि करीब था कि एक गिरोह के कलेजे टेढ़े हो जाएं, यानी उनके दिल में शक आ चुका था, वो दीन से भाग रहे थे, लेकिन सुम्मताबा अलैहिम, اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والا ثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں ان پر گھٹنے لگیں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہیں وہ آیتیں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت توبہ۔ حلال بن امیہ، مرار بن ربیعہ، کعب بن مالک صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، ڈیلنگ، ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں، دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، صرف لیزینس۔ پہلے ہم صبح اٹھتے نہیں، ہم کہتے نہیں، پھر کہتے تھوڑی دیر میں جاؤں گی، پھر تھوڑی دیر ہوتی کہتے اچھا سوچتی ہوں، اچھا نہیں، چلو اب تو دیر ہی ہوگی، اب تو ابھی تیار ہوں گے، پھر گاڑی میں بیٹھیں گے، چلو پھر آدھا تو نکل ہی جانا ہے، تو گھر سے ہی سن لیتے ہیں، اور گھر سننے بیٹھتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر ساتھ خیال آتے سبزی بنا لوں، سبزی بناتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں اچھا وہ آٹا بھی گوندھ لوں، اور پھر تو میرا انتظار کر، کارے جہاں دراز ہے۔ یہ شیطان کے ٹریپس ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ سب سے زیادہ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ آج شیطان کی بات مانیں تو آپ پہلے آرام کریں، دیر تک سوئیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے میں ان کو تھام لیتا ہوں، جیسے ان تینوں کو اللہ نے پکڑا، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوئی اور وہ بچے۔ تفصیلی واقعہ آپ کو ان کا سنایا جا چکا ہے تفسیر کی کلاس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ہے مورل اسٹوری کا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے سچ کی وجہ سے یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی، تو میں اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے۔ سب سے پہلے تو خود سے سچ بولیں، پھر اللہ سے سچ بولیں، پھر اپنے کاموں سے، اپنے مشن سے، اپنی کمٹمنٹ سے سچ بولیں۔ جھوٹے عذر جھوٹ کی ایک قسم ہے، جھوٹے بہانے یہ سب کچھ انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہیں۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، نہ تھا اہل مدینہ کو اور جو ان کے گرد اعراب ہیں یہ لائق کہ وہ رسول سے پیچھے رہ جاتے، اور یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ پیارا سمجھے۔ یہ ہیں وہ ابو خیسمہ کی آیتیں جو پچھلے روپ میں سنا چکی ہوں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو تو اللہ کے راستوں میں نہ پیاس لگی، نہ تھکن ہوئی، اور نہ بھوک سے ان کے پیٹ چپکے، اور نہ یہ اس طرح چلے کہ دشمن کو غصہ دلائیں، اور نہیں یہ لیتے دشمن سے کچھ لینے کی چیز، الا کتب لہم بہی عمل صالح، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ایک عمل صالح، کیونکہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کے۔ یہ ہیں وہ آیتیں جو انسان کو ڈھارس دیتی ہیں۔ دیکھیے، ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو عام لوگوں کے کرنے کی ہے، یہ بہت ساری ہوتی ہیں، ہم سب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو خاص نیکیاں، جو کل قیامت کے دن تجھے پیش تو کرو۔ کپڑا لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں عام کپڑا ہے، یہ سب لے رہے ہیں، نہیں مجھے کوئی خاص چیز چاہیے۔ فرنیچر رہنے یہ کامن ہو گیا، بیڈ شیٹ ڈیزائن بڑا کامن ہو گیا۔ تو نیکیوں میں ہم صرف کامن نیکیاں کریں گے، جس کا رواج ہو گیا، جس کا فیشن ہے، جو سب کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نیکی کرے انسان کہ جس کے بعد واقعی کہہ سکے کہ یونیک نیکی، میں سب سے بڑھ کے آگے بڑھوں گی تاکہ میں یہ نیکی کروں۔ اور اللہ تعالیٰ اور تسلیاں دلاتے ہیں، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں خرچ کرتے وہ کوئی خرچ کرنے کی چیز چھوٹی یا بڑی، اور نہیں پار کرتے وہ کوئی وادی، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کا اجر، تاکہ اللہ ان کے کاموں کی اچھی جزا ان کو دے۔ اللہ کہاں رکھتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم انسان نہیں کسی کا رکھتے تو اللہ کہاں رکھے گا۔ اب جب اتنے فضائل سنے اللہ کے راستوں میں نکلنے کی، تو لوگوں کو لگا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے ہم جہاد پہ نکل جائیں، تو کہا نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل پڑتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اب آپ اس کا جواب دیں، آپ کورس کر چکے، یہی منہج ہے نا، یہی میتھڈالوجی ہے نا، کہ اپنے اپنے علاقوں سے آئیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنے اندر ایکسیلنسی لائیں، اور پھر جا کے آگے اپنے علاقوں والوں کو سکھائیں۔ अगर सीखने में सीरियस नहीं है तो क्या आप सिखाने में कल सीरियस होंगे? सीखने के लिए आने में वक्त की पाबंदी नहीं, तो सिखाने के लिए जाएंगे तो पाबंदी होगी। पूरा सीखा ही नहीं तो पूरा पहुंचाएंगे। सीख लिया लेकिन सिखाना नहीं सीखा तो क्या सिखाएंगे? ये आज के इल्म के मसले हैं। अधूरी कोशिशों से पूरे नतीजे कभी नहीं निकलते। और आप सब जिस इलाके से आए हैं वो आपका मुंह देख रहे हैं। अपने अंदर ऐसी एक्सीलेंसी पैदा करें, अपनी तजवीद अच्छी करें, अपनी अपना फहम दुरुस्त करें। चाहे आप तफसीर को लेके ऑडियो के साथ चलें, साथ जो भी करें, लेकिन आपको अपने अंदर स्किल्स लानी होंगी और प्लान्स बनाएं। आपके जहनों में अगर अभी तक प्लान नहीं है ना अपने अपने इलाके का, तो दैट मीन कि आप इस आयत पे अमल नहीं कर रहे। अभी वो अंदर आग नहीं लगी, अभी वो खौफ नहीं पैदा हुआ कि अल्लाह तूने हमें जो नेमत दी है वो कितनी प्यारी है और हमने दूसरों से शेयर करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो इन मुनकिरीन हक से जो तुमसे करीब हैं। यहाँ तरतीब बता दी, जिहाद है या किताल, करीब वालों से मामला शुरू होगा। और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। وَعَلَمُنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, और खूब जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। तो यहाँ पर रुक पूरा होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें एक्सीलेंसी के दर्जे पे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला हमें काम करने की तौफीक दे। लेकिन अगर पूरे दिल का काम नहीं होगा, पूरी कोशिश नहीं होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता तो उसमें और ख़राबियाँ ही आती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें अपनी सलाह की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।